लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि ख्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव के रूप में हम अपने जीवन को सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सत्यापित करने का मेरा तात्पर्य यही है कि हम किसी न किसी रूप में अपनी योग्यता को अपने जीवन में साबित करने का प्रयास करते हैं। हम अपने में यह प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि हम में कितनी क्षमताएं हैं, हम दूसरों से अच्छे हैं या हम किसी भी कीमत में दोयाम दर्जे के व्यक्ति नहीं है। इस भांति अपने मानवीय स्वभाव के अनुरूप हम अपने में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो किसी विशेष मुकाम को हासिल करने में प्रमाणित होता है। हमारी सफलता हमें इस तरह व्यक्तिगत रूप में संतोष और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। श्रोताओं, पूजन विधि वार्षिक कालचक्र के द्वितीय रविवार हेतु लिए गए आराधना विधि चिंतन पाठों का आशय हमारा ध्यान हमारे जीवन के सार की ओर कराता है, जहां हम अपने जीवन के द्वारा अपने को सत्यापित करने हेतु नहीं वरन ईश्वरीय कार्यों के निष्पादन द्वारा जो हमें सौंपा गया है जीवन दाता ईश्वर का साक्ष्य देने हेतु बुलाए और भेजे गए हैं। आइए हम सुसमाचार में ईश्वरीय जीवनदायी वचनों पर कान देते हुए इस संसार में अपने भेजे जाने के अर्थ को समझने का प्रयास करें। ईश्वर ने क्यों मानव के रूप में मुझे एक सुंदर जीवन दिया है? क्या मैं अपने इस जीवन का अर्थ समझता हूँ और इसे ईश्वरीय योजना के अनुरूप जीने का प्रयास करता हूँ?
योहान ने येसु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप भर लेता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इसराइल पर प्रकट हो जाए। फिर योहान ने यह साक्ष्य दिया, मैंने पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा है। मैं तो उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र हैं।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे अंतःस्थल का स्पर्श करे और हमें अपने जीवन के मर्म को जानने और समझने हेतु प्रेरित करे, जिससे हम इस जीवन को अपने लिए नहीं वरन जीवन दाता ईश्वर की महिमार्थ उचित रूप में जीने के योग्य बन पाए। श्रोताओ, इसायस नबी के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वरीय सेवक के रूप में संबोधित करता है। तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। ईश्वर ने हम सबों को माता के गर्भ से ही चुन लिया है और इसका प्रमाण हमारे लिए यही है कि हमें एक मानव के रूप में यह जीवन मिला है। इस तरह ईश्वर हमें जीवन देने के द्वारा हमारे जीवन के माध्यम अपनी महिमा प्रकट करने की आशा रखते हैं। नबी इसायस के वचनों के द्वारा वे हमें कहते हैं, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। अपनी महिमा प्रकट करने हेतु वे हमें राष्ट्रों के बीच भेजते और हमें अपनी ज्योति से परिपूर्ण करते हैं, जिससे हमारे द्वारा उनका मुक्ति विधान संसार में फैल जाए। श्रोताओं, कुरुंथियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ ईश्वर में हमारे चुने जाने को और भी सार्थक निरूपित करते हुए हमें इस बात की याद दिलाता है कि ईश्वरीय कार्यों को करने हेतु बुलाए जाने के क्रम में ईश्वर ने हम में से प्रत्येक जन को पवित्र किया है। श्रोताओं, यह इसलिए कि ईश्वर स्वयं पवित्र हैं और वे हमें भी अपनी पवित्रता में सम्मिलित करना चाहते हैं, जिससे हम उनकी पवित्र प्रेरिताई का साक्ष्य अपने जीवन के द्वारा दे सकें। अतः संत पौलुस हमें कहते हैं, आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के संग संत बनने हेतु बुलाए गए हैं जो यीशु मसीह के नाम को घोषित करते हैं। श्रोताओं, बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम यीशु ख्रिस्त में अपने पापों से मुक्त और पवित्र किए गए हैं तथा ईश्वरीय संतान बन गए हैं। इस भांति हम अपने विश्वास में त्रित्वमय ईश्वर के नाम को घोषित करते हैं। इस तरह हमारी पवित्रता की निशानी हमारे लिए यही है कि अपने जीवन के दुख तकलीफों और मुसीबतों में भी हम ईश्वरीय अनुग्रह तथा शांति का एहसास करते हैं जो हमें ईश्वर की ओर से दिया जाता है। यद्यपि हम ईश्वरीय अनुग्रह और शांति के योग्य नहीं हैं, फिर भी हमें यह मुफ्त में मिलता है। आज के सुसमाचार में हम मानव जीवन के संदेश का सार पाते हैं। योहन ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर यह साक्ष्य दिया, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। योहन बपतिस्ता ने यीशु के बारे में अपने शिष्यों को बतलाया और जनता को इस सच्चाई का साक्ष्य दिया कि यीशु ख्रिस्त कौन है और क्यों इस धरती पर आए हैं। यर्दन में बपतिस्मा के दौरान यह रहस्य स्वयं योहन के लिए प्रकट किया गया कि यीशु ख्रिस्त ईश्वर के परम प्रिय पुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में उतरते देखा। इसके पहले वे स्वयं उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन जिन्होंने उन्हें बपतिस्मा के कार्य की जिम्मेदारी सौंपी थी उन्होंने ही उन्हें यह कहा था कि जिन पर तुम पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्रदान करेंगे। योहन ने यर्दन नदी में अपने कार्यों को करते हुए इस बात को देखा और इसका साक्ष्य दिया। श्रोताओं, आज के पाठों का संदेश हमारे लिए यही है कि ईश्वर ने हमें अपने सेवक स्वरूप चुना है, जिससे हम सारी दुनिया को उनका साक्ष्य दे सकें। अपने इस कार्य हेतु पिता ने हमें पुत्र में बपतिस्मा संस्कार द्वारा पवित्र किया है। हम अपने जीवन में जिस किसी कार्य को कर रहे होते उन्हीं कार्यों में वे हमें अपने रहस्य को प्रकट करते हैं, जैसे कि उन्होंने योहन बपतिस्ता के लिए यीशु ख्रिस्त को ईश मेमना स्वरूप प्रकट किया। हमारे जीवन में ईश्वर का रहस्य पवित्र आत्मा की ज्योति द्वारा हमारे लिए स्पष्ट होता है, क्योंकि वही हमारे लिए ईश्वरीय ज्ञान और विवेक के स्रोत हैं। आइए हम त्रित्वमय ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमें अपने मुक्ति का साधन बनाएं, जिससे हम योहन बपतिस्ता की भांति अपनी नम्रता में मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त का साक्ष्य अपने नित्य प्रतिदिन के जीवन में दे सकें।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 18 जनवरी को टोरंटो के संत बेनेडिक्ट के मछुआरों से मुलाकात कर उन्हें अपनी बहुमूल्य निधि को नहीं खोने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उनका विश्वास एक कीमती निधि से प्रेरित है। यह निधि लोकप्रिय धार्मिकता है जो ईश्वर पर भरोसा में, प्रार्थना के मनोभाव में और बच्चों को ख्रिस्त शिक्षा प्रदान करने में प्रकट होता है। यह परिवार के लिए सम्मान है, एकात्मकता की भावना है जिसके द्वारा वे एक दूसरे की मदद करते और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। टोरंटो के संत बेनेडिक्ट के मछुआरों के साथ उनकी आध्यात्मिक मदद करने वाले पुरोहित और धर्माध्यक्ष भी उपस्थित थे। संत पापा ने उन्हें उनकी आध्यात्मिक यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। मछुआरों को संबोधित कर संत पापा ने कहा, आप अपने क्षेत्र के सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण श्रेणी हैं। आधुनिक समाज जिसकी विशेषता विकास है, इसमें मछुआरों को कभी कभी सूखी भूमि पर सुरक्षित कार्य करने की चाह हो सकती है। फिर भी जिसने समुद्र में जन्म लिया हो वह समुद्र को अपने हृदय से कभी दूर नहीं कर सकता। उन्होंने उन्हें असुविधाओं एवं अनिश्चितताओं के सामने हिम्मत नहीं हारने और साहसी बने रहने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके अधिकारों और वैध आकांक्षाओं को मूल्य दिए जाने की जरूरत है। संत पापा ने समुद्र तल पर बचाव कार्य के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। अत्यधिक मात्रा में कचरे जिसमें खासकर प्लास्टिक को हटाने की कोशिश की जा रही है। संत पापा ने इसे इटली के अन्य जगहों और पूरे विश्व के लिए आदर्श कहा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक हटाने का काम जिसको वे स्वेच्छा से कर रहे हैं, स्थानीय समाज के लोग भी उनसे सीख सकते हैं और इस वैश्विक समस्या का समाधान करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। संत पापा ने मछुआरों को याद दिलाया कि उनका पेशा पुराना है। मछुआरों के जीवन एवं उनसे जुड़ी घटनाओं को हम बाइबल में भी पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, यीशु के प्रथम शिष्य आपके सहकर्मी थे जिनको गलीला झील के तट पर उन्होंने अपना अनुसरण करने के लिए बुलाया था। मैं आज भी सोचता हूँ कि आप में से कितने लोग अपने करीब प्रभु के आध्यात्मिक उपस्थिति को एहसास कर सकते हैं। आपका विश्वास एक कीमती निधि से प्रेरित है। संत पापा ने उन्हें इस निधि को नहीं खोने की सलाह दी और अंत में उन्होंने कुंवारी मरियम एवं संरक्षक संत फ्रांसिस्को दी पाओलो को समर्पित करते हुए उन पर ईश्वर की आशीष की कामना की। हृदय की बीमारी को चंगाई की आवश्यकता है और इसकी दवाई है क्षमा मांगना। यह बात संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को वैटिकन के संत मार्था प्रार्थनालय में ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए प्रवचन में कही। प्रवचन में संत पापा फ्रांसिस ने संत मार्कुस रचित सुसमाचार से लिए गए पाठ पर चिंतन किया जिसमें एक अधांग रोगी को यीशु चंगाई प्रदान करते हैं। कफरनाहुम के एक घर में जहां यीशु ठहरे हुए थे उनसे मुलाकात करने के लिए लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि उनके पास पहुंचना नामुमकिन था। अतः लोगों ने घर की छत खोलकर रोगी को यीशु के सामने उतारा। संत पापा ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य एक वरदान है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, किंतु प्रभु हमें सिखलाते हैं कि हमें अपने हृदय के स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी चाहिए।
संत पापा फ्रांसिस ने वर्ष के सामान्य तीसरे रविवार को ईश्वर के वचन का रविवार के रूप में स्थापित किया है जो इस वर्ष 26 जनवरी रविवार को पड़ रहा है। इसे ईश्वर के वचन के उत्सव, अध्ययन और प्रसार के लिए समर्पित एक विशेष दिन के रूप में देखा जाना चाहिए। नवीन सुसमाचार को बढ़ावा देने हेतु गठित परम धर्मपीठ या सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष सल्वातोर फिसिकेला ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह एक पहल है जिसे संत पापा ने पूरी कलीसिया को सौंपा है ताकि ख्रिस्तीय समुदाय ईश्वर के वचन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सके। महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने कहा कि यह ख्रिस्तियों को ईश्वर के निरंतर संवाद से आने वाली प्रतिबद्धता और समझ को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। यह विश्वासियों को ईश्वर के वचन के प्रसारण के जीवित साधन बनने हेतु प्रेरित करेगा। 2008 में ईश्वर के वचन पर हुई धर्माध्यक्षीय धर्म सभा के दौरान पवित्र शास्त्र के अध्ययन, चिंतन और प्रसार को बढ़ाने पर चर्चा की गई थी। महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने योजनाओं और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का उल्लेख किया जो उस धर्म सभा के बाद से दुनिया भर में आयोजित किए गए, जैसे प्रार्थना करने के लिए बाइबल का प्रयोग, विभिन्न भाषाओं और समरूपों में ईश्वर के वचन को सुलभ बनाना। उन्होंने ख्रिस्तीय एकतावर्धक मूल्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि रविवार 26 जनवरी यहूदियों और कैथोलिकों के बीच संवाद का दिन तथा ख्रिस्तीय एकतावर्धक सप्ताह का अंतिम दिन भी है। इस दिन संत पापा फ्रांसिस संत पेत्रुस महागिरजाघर में पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान करेंगे। वचन समारोह से पहले द्वितीय वाटिकन महासभा के सभी सत्रों में प्रयोग की गई पाठ संग्रह का समारोही प्रतिष्ठापन किया जाएगा। मिस्सा समारोह के समापन पर संत पापा फ्रांसिस 40 लोगों को एक एक बाइबल प्रदान करेंगे जो समाज के विभिन्न तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार 17 जनवरी को वाटिकन में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स अंतोनी से मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात में दोनों नेताओं ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और वाटिकन के बीच द्विपक्षीय आपसी संबंधों पर प्रसन्नता व्यक्त की और हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए फ्रेमवर्क समझौते के अनुसमर्थन पर संतोष व्यक्त किया। आपसी हित के मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कैथोलिक कलीसिया के योगदान और राष्ट्र के आम अच्छे एवं अभिन्न विकास को बढ़ावा देना शामिल था, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। संत पापा और राष्ट्रपति ने अफ्रीकी राष्ट्र के पूर्वी प्रांतों की स्थिति पर भी ध्यान केंद्रित किया, जहां निरंतर सशस्त्र संघर्ष और इबोला वायरस के प्रसार के कारण आबादी पीड़ित है। अंत में उन्होंने हजारों शरणार्थियों और विस्थापितों के गरिमा की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता और सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर अपनी वार्ता को केंद्रित किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।